ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सदा शांति के स्वरूप में स्थित रहने वाले, शांति के सागर बाप की गोद में पलने वाले, शांति धाम की यात्रा करने वाले, कराने वाले, शांति की दुनिया को धरा पर स्थापित करने वाले आप सभी बाप दादा का शांति दूत आत्मा को प्रातःकालीन प्रणाम। बाप दादा बच्चों को डबल ताजदारी बने। उससे पहले बाबा ने कहा, आप तो पूर्वज भी है, पूज्य भी है। आप इस कल्प वृक्ष में बाबा के, ब्रह्मा बाबा के साथ टॉप में भी है और बॉटम में तपस्या में भी है। इसके लिए आप सभी पूर्वज हैं और पूजनीय भी है। जो पूर्वज आत्मा है वो पूजनीय है। उसमें भी बाबा ने कहा, मैं तो सिंगल पूज है, आप सो डबल पूज बनते हो। आपके शरीर के साथ पूजा होता है, बाबा का तो केवल शिवलिंग के रूप में, निराकार के रूप में पूजा होता है। बाबा ने हम सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाया। सृष्टि के आदि से लेकर के अब तक हम इस 5000 वर्ष की साइकिल में विभिन्न पाठ बजाते आए और इस समय में हम सभी बाप दादा ने हम बच्चों सहित सभी आत्माओं को वापस घर ले जाने के लिए तैयारी किया है। हम सभी बाबा की दरवाजा खोलने के लिए बाबा के साथ हम सबको अंगुली देना है, सहयोग देना है और यवर रेडी रहना है। साथ साथ में हम बच्चे अपनी दुनिया अपने कर्मों के माध्यम द्वारा, गुणों के माध्यम द्वारा, शक्तियों के माध्यम द्वारा, बाप दादा के वरदानों के माध्यम द्वारा इस धरा को ऐसी सजाए, सुंदर बनाए, पवित्र बनाए, पावन बनाए, ऐसे बनाने के कर्तव्य भी हम बच्चों को दिया हुआ। बाबा शिक्षा देता है, वरदान देता है, शक्ति देता है, विजन देता है और उसका सारी नक्शा बाबा बना के देता है, दिया हुआ, उसको साकार करना, उसको प्रैक्टिकल रूप देना, क्योंकि हम लोगों को उसका फल अनुभव करने वाले, उसकी यश का अनुभव करने वाले। बाप दादा तो मुक्ति धाम में ले जाएगा, जीवन मुक्ति में बाबा नहीं आएगा, परंतु बाबा का गुण और वरदान हमारा साथ रहेगा हर एक आत्मा में। इसके लिए इस समय में बाबा का दुनिया में सेवा की बहुत महत्व है। जिस्मानी सेवा कहो, सोशल सेवा कहो, गरीबों की सेवा करो, हेल्थ की सेवा करो और अनेक प्रकार की सेवा इस दुनिया में बहुत समय से हम भी करते आए, दुनिया भी अभी भी कर रहे हैं। सरकार भी सेवा ही करते हैं, गरीबों को उत्थान करने के लिए, फार्मर्स का उत्थान करने के लिए। इसके लिए बहुत विंडो खोल के रखा है इन्होंने, विद्यालय, महाविद्यालय, हॉस्पिटल, अनेक स्कीम भी बनाए, परंतु उनकी सेवा से आत्मा देवता नहीं बन सकते, उनकी सेवा से विश्व का मालिक नहीं बन सकते, इनकी सेवा से पवित्र पूज आत्मा नहीं बन सकते, इनकी सेवा से चाहे सरकार से लेकर के सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, आजकल रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है, अन्य क्लब्स है, ये आदि सभी सोशल सेवा करने में अग्रज लोग हैं, परंतु फिर भी आप और हम अर्थात ब्राह्मण परिवार की भाई बहने जो सेवा करते हैं वो तो श्रीमत प्रमाण करते हैं, और बाबा जो सेवा दिया है खुद वो पवित्र बनो दूसरों को भी पवित्र बनाओ, खुद योगी बनो दूसरों को भी योगी बनाओ, और खुद विश्व कल्याणकारी बनो दूसरों को विश्व कल्याण के मार्ग दर्शन करो। इसके लिए हम अभी जो भी काम करते हैं पक्ष भेद नहीं, पार्टी का भेद नहीं है, लिंग भेद नहीं है, वर्ण भेद नहीं है, सिर्फ आत्मा आत्मा का दृष्टि से देखकर उन आत्मा के अंदर ज्ञान का बीज बोते हैं और उस बीज वट वृक्ष के रूप में आगे विकसित होकर के एक सुंदर दुनिया बन जाते हैं। ऐसी श्रेष्ठ दुनिया जिसका कल्पना कोई कर नहीं सकता है, हम लोग उस दुनिया का मालिक बनते हैं, ऐसी दुनिया का। इसके लिए बाप दादा ने सेवा का बहुत महत्व, हमारा चारों सब्जेक्ट में सेवा एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, चाहे ज्ञान की बात है क्योंकि ज्ञान तो बाबा ने दिया हुआ 84 जन्मों का ज्ञान, कर्म कर्म विकर्म की ज्ञान, परंधाम से लेकर की सृष्टि चक्र में अलग अलग धर्म की स्थापना के काम, ये सारी बातें आप सभी जानते हैं। अभी बाबा ने कहा अंधों को लाठी बनो, अंधे क्योंकि ज्ञान नहीं है, पवित्रता की बात नहीं जानते हैं और आत्म दृष्टि नहीं है, सेवा भाव में नामदारी है, नाम के लिए सेवा करते हैं और एक्सपेक्टेशन से करते हैं, परंतु हम तो जो भी काम करते हैं बाबा के लिए अर्पित करते हैं, बाबा का सहयोग लेकर के सर अर्पित करते हैं। इसके लिए बाबा ने बहुत प्रकार की सेवा है, मुझे एक इस समय में याद कर रहा हूं, मुख से वाणी से सेवा हम करते हैं, बहुत लोग करते हैं, हम सभी ब्राह्मण लोग करते हैं, उसकी अपनी महत्व है, इम्पोर्टेंट है, और उसके साथ हम सभी गायन योग्य बन जाते हैं और पूजन योग्य भी बनते हैं। आप सभी देखा होगा मैं ब्राह्मण परिवार में आने के बाद में मधुबन में आने के बाद में अव्यक्त बाबा से अनेक बार हम सभी मिलते थे, विशेष करके पांडव भवन में स्त्री हॉल, उसके बाद में योग भवन मेडिटेशन हॉल में बाबा शाम को 7 बजे से लेकर कई बार 4-5 बजे तक बाबा बच्चों से ग्रुप वाइज, पहले तो कलेक्टिव मिलते थे देन ग्रुप वाइज मिलते थे और कुछ इंडिविजुअल के रूप में भी बाबा मिलते। इनमें मैंने जो नोट किया सबसे बाबा का विदाई देने के टाइम है किसको बाबा याद करते थे, हमारा बोली दादी को, बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी, गुलजार दादी की तनमे बाबा है, चंद्रमणि दादी, मनोहर दादी, अन्य शांतामणि दादी, अनेक महारथी भाई बहने सभी बाबा के सम्मुख में उपस्थित होते थे, बाबा ने ऐसा सबको दृष्टि देता था भोली दादी कहाँ है, बाबा पूछता था, भोली दादी को बाबा याद करता था। अब क्यों याद करता था आप समझ सकते हैं, भोली दादी कभी किसी को क्लास कराने नहीं जाती थी, कोई कॉन्फ्रेंस में नहीं जाती थी, कोई बड़े बड़े कार्यक्रम में नहीं जाती थे, परंतु अन्नदास हो कहा जाता है, इंडिया में अन्न को बहुत बड़ी महत्व है और अन्न और ब्रह्मा भोजन बना करे कोई भी आवे, किसी टाइम में आवे, कोई भी जाना हो आना हो, उन सब के लिए विशेष करके भोली दादी निमित्त बनी, और उसका आयु में बड़ी उम्र में भी कम से कम 16 घंटा किचन में बैठ करके दादी ने सबको एक सेवा कर, बाबा भोली दादी को बुला करके उसको वरदान दे करके उसको ठोली चला। देखो कर्मणा सेवा, चाहे खाना पकाने का सेवा क्यों नहीं, खाना बांटने का सेवा क्यों ना हो, खाना परोसने का सेवा क्यों ना हो, वो स्थूल सेवा है, परंतु उस सेवा से भी बाप दादा खुद उनको याद करते, हम बाबा को याद करते, बाबा उन सेवादारी को बाबा याद कर। इसके लिए बाबा ने कहा हड्डी हड्डी सेवा करने, इसमें सेवा में नीचे ऊपर ऊंच सेवा है, वो कमी सेवा है, वो स्थूल सेवा है, ऐसी नहीं है, उसको हम ईश्वरी सेवा समझ करके करते, बाबा की याद करके करते। उसके लिए बाबा ने उसको भी उतना ही मार्क्स देता है, उतना ही अंक देता है, उतना ही बाबा उसको महत्व देते हैं। इसके लिए कर्मणा सेवा भी बहुत महत्व है, क्योंकि कर्मणा सेवा तो बाबा नहीं कर सकते, उसको काय नहीं है। फिर भी ब्रह्मा बाबा की टाइम में, ब्रह्मा बाबा के माध्यम द्वारा बाबा कभी कभी गोबर का जो बनाते थे ना, इसको क्या बोलते है, हाँ, उपलेट, उसको बाबा ने खुद ही बना करके बच्चों को एक आदर्श प्रस्तुत किया। उसके साथ साथ बाबा कभी कभी बर्तन भी धोया है, मैंने सुना, ये सबसे बड़ी बात है। विश्व की आदि पिता है, ब्रह्मा है, विश्व का मालिक है, श्री बाबा का रथ है, और इतने होने के बावजूद भी, इतनी छोटी काम समझ करके भी, वो छोटी काम नहीं है, वो विशेष काम है, आवश्यक काम है, आवश्यक समय पर आवश्यक सेवा सहयोग देना इम्पोर्टेंट। इसके लिए बाबा ने खुद इसका एक फाउंडेशन लगाया, वह आदर्श बना। इसके लिए बाबा ने वो भी काम बाबा ने किया, और साथ साथ में बाबा कभी कभी चौपाई बनाने में, उसको हमारे मधुबन में पहले तो सारी वो पट्टी बांधते थे, वो सभी उसके भी का बाबा ने किया है। और ऐसी बहुत बातें बाबा ने अपने आप अपने कर्मों से, अपने कर कमलों से बाबा ने किया। इसके लिए उसमें नीच और बड़ा व कमी ऐसा नहीं है, नीच शब्द यूज करना ठीक नहीं है, परंतु बाबा ने उसको इतने महत्व दिया। इसके लिए सबसे बड़ी, बाबा ने डबल ताजदारी बनाई, चले सत्युग में भी तो है ही डबल ताजदारी, संगम युग में भी डबल ताजदारी बाबा देखता है। एक तो पवित्रता की ताज, उसी कारण से हम विश्व में प्रसिद्ध बनते हैं, उसी कारण से हम विश्व में पूजनीय बनते हैं, उसी कारण से माया जीत होते हैं, उसी कारण से लोकप्रिय बनते हैं, उसी कारण से स्वरूप के प्रति समभाव, क्षमा भाव, दया भाव, प्रेम भाव, ये सारे उस पवित्रता की ताज के कारण। साथ साथ में बाबा ने ये सेवा जो बनाने के कर्तव्य जो है, इसके लिए वज्र की ताज भविष्य में बाबा ऐसी गोल्डन ताज कहो, वज्र की ताज कहो, प्रॉस्पेरिटी का ताज कहो, जो भी है, ऐसी ताजदारी बाबा ने बनाने के लिए आपका मुख का यूज करता है, आपका तन का यूज करता है, धन का यूज करता है, समय का यूज करता है, हर बात में इस चीज को हम यूज करते हैं, इसी कारण से हम ताजदारी भी बनते। इसके लिए उसको बाबा ने संगम युग में डबल ताजदारी बना, माना डबल सेवा करना है, रूहानी डबल सेवादारी इस समय में हम बनेंगे, उससे के आधार से हमारा स्टेटस भी फिक्स होता है, उसके आधार से हमारा आदि से आने का वह नंबर वाइज नहीं, नंबर वार नहीं है, नंबर वन बनने का भी विधि है। उसके साथ साथ बाबा ने हमारा तन को, मन को, धन को, क्योंकि धन भी बहुत महत्वपूर्ण है, संगम युग में ब्राह्मणों का धन है, एक बहुत महत्वपूर्ण खजाना है, उस खजाने को बाबा ने ईश्वरीय सेवा में समर्पित करना, इससे हजार गुना प्राप्त करने का एक विधि है। चलिए बाबा ने, बाबा के समय में ब्रह्मा बाबा ने जो भी जितने भी था उनके पास उस समय में सभी बाबा को अर्पित कर दिया, शिव बाबा को यज्ञ रचा। इस यज्ञ के सभी वत्सों को पहले 14 साल उनको पालना दिया, उसके बाद में इधर भी आने के बाद में बाबा ने ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय बनाया, और वो मंडली से विश्वविद्यालय बन गया, और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बहुत संख्या, बहुत सेंटर शादी बाबा ने कहता था। अब दो फुट जाग में भी आप सेंटर खोल सकते हैं, हॉस्पिटल खोल सकते हैं, ऐसे बाबा ने प्रेरणा दे करके आज इसमें देश विदेश में वो दो एक कमरे से भी आप सेवा कर सकते हैं, ऐसी ऐसी बातें बाबा ने हम बच्चों को संकल्प दिया था प्रेरणा, उसका फल स्वरूप परिणाम स्वरूप बाबा के बच्चे अपना तन को भी यूज किया, मन को भी यूज किया, धन को भी यूज किया, क्योंकि उन्हें वेस्ट नहीं करना। अरे मुझे याद है बहुत आदि समय लगभग 50 साल पूर्व में भी मैंने देखा, सेंटर में अधिक से अधिक बहनें आती थी, माताएं आते थे, और माताएं अपने घर से पुड़िया अपने चावल की आधा किलो चावल आधा किलो दूसरा और थोड़ा घी थोड़ा ये आदि आदि ले आकर के, इतने बड़े प्रमाण में उन दिनों में नहीं था, फिर भी बाबा ने देखा लास्ट तक उन माताओं को उन बहनों को व उन भाइयों को बाबा याद करता था, मैंने देखा साकार बाबा ने। और इसके लिए उन माताएं ने उस समय इस यज्ञ की सहयोग दिया, उस समय की सहयोग दिया, चाहे उस प्रमाण की आज के प्रमाण में वो कम है क्वांटिटी में, परंतु वो क्वालिटेटिव सर्विस थे, ये आवश्यकता सेवा थी, और ऐसी सेवा किया उसी कारण से उनको इतनी भाग की बाबा खुद भी उन बच्चों को याद करते। इसके लिए ब्राह्मणों का पाए पाए भी ईश्वरी सेवा में सदुपयोग होना चाहिए, क्योंकि ये सेवा सतयुग में नहीं मिलता है, ये सेवा त्रेता में नहीं मिलता है, ये सेवा द्वापर में नहीं मिलता है, ये सेवा कलयुग में भी नहीं मिलता है, केवल संगम युग में ही बाबा ने ये सेवा करने का बहुत मिले। दूसरी युगों में इसकी सेवा का महत्व नहीं है, परंतु संगम युग में बाबा की सेवा करने के लिए आप कोई भी साधन बनाते हो, सेंटर बनाने का और सेंटर को सजाने का, सेंटर की आवश्यकता को पूर्ण करने का, जो भी हम इस कार्य में हम हाथ आगे बढ़ाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत सेवा होती है, उसको खुशी होता है, इसके लिए धन सफल होता है। मुझे याद है जब ओम शांति भवन जो बन रहा था, बनने से पूर्व उधर एक पेड़, अभी भी वो पेड़ है आपने देखते हुए, उधर क्लास करके दादी ने सबको प्रेरणा दिया, इस ओम शांति भवन की कल्पना एक विजन एक नक्शा दादी ने निर्वैर जी ने उस समय में जगदीश जी आदि सभी थे, उन्होंने कल्पना दिया। मैंने देखा उस समय में पार्टी में लोग 400 500 हजार तक भी आते थे पांडव भवन में, उनमें बहुत लोगों ने अपना धन यूज किया, अपने कुछ माताएं बहनों ने अपने गोल्डन रिंग्स निकाल करके व बैंगल्स निकाल करके यज्ञ में सेवा किया। मैं उन दिनों में नया नया था आया था, परंतु नया मानो ऑलरेडी 10-15 साल तो हो गया था, उस दृश्य को मैं अपने आंखों से देखा था, और उसी कारण से उसे फल स्वरूप ओम शांति भवन आज भी सबसे ज्यादा से ज्यादा याद जो करते ओम शांति भवन को याद करें, सबसे ज्यादा सेवा उस भवन के माध्यम द्वारा हुई, सबसे ज्यादा वीएपी जो आए उसकी भवन से याद, परंतु बाबा ने उस कार्य को दादी के नेतृत्व उस तब तक तो प्रकाशमणि दादी चीफ ऑफ ब्रह्म कुमारी थे, और उसके माध्यम द्वारा सेवा किया, उसका फल स्वरूप पांडव भवन की और भी सेवा बहुत विस्तार हो गए, और ईश्वरीय विश्वविद्यालय का यूनाइटेड नेशंस में रिकग्निशन मिला, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ब्रह्म कुमारी को पीस मैसेंजर का अवार्ड मिला, वो तब मिला था जब पांडव भवन में जो ओम शांति भवन बना, तब यूनाइटेड नेशंस का तत्कालीन डॉक्टर मुल्लर है, ओस्ट्रास्की है, और भी अनेक मेहमान है, वो लोग उधर आए थे, गवर्नर चीफ मिनिस्टर बहुत लोग आए, उसकी अलग संख्या है, परंतु बाबा ने बच्चों को माताओं के माध्यम द्वारा, कुमारियों के माध्यम द्वारा और हम सब के माध्यम द्वारा बाबा ने ऐसा सेवा कराया, आज वो एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक सिग्नेचर बिल्डिंग कहो, एक प्रमुख बिल्डिंग कहो, एक आकर्षक बिल्डिंग कहो, उसके बाद में बाबा ने वो बहुत कम हो गया, बाबा ने कहा था और थोड़ा जगह लो, जगह लेकर के माउंट आबू में कोई भी जगह मिलता है तो और कुछ विस्तार करने के लिए सोचो, बाबा ने अव्यक्त बाबा ने कहा था दादी को। उस समय में एक दूध बेचने वाले भाई हमारा घर पांडव भवन में आते थे, रोज दूध देके जाता था, उसने इस एरिया का कुछ उनका जंगल था, उन्होंने वल्लभ भाई को कहा हमारे पास कुछ जमीन है, हम आपको देना चाहते हैं, आपको इच्छा हो तो इसको ले सकते। उसके बाद में जंगल ही था और इस जंगल में हम लोग आकर के देखे, दादी खुद आए, दादी देखने के बाद में इस जमीन खरीद करने की संकल्प किया। वो सब इसकी हिस्ट्री लंबा है। उसकी टाइम में भी हम लोगों ने फर्स्ट इसका एक मीटिंग हुआ था पांडव भवन में, मेडिटेशन हॉल में। मेडिटेशन हॉल में सभी देश की मुख्य मुख्य भाई बहनों को, जैसे हमारा एनुअल मीटिंग होता है, उन दिनों में एक मीटिंग था। परंतु आजकल तो 1000-2000 लोग आते हैं मीटिंग में, उन दिनों में करीब 150-200 लोग ही थे। बाबा ने उस मीटिंग के एक नक्शा बनाया, सबको एक्सप्लेन किया और उसका बजट एस्टिमेट किया, उन दिनों में कितना बजट होता है। और बजट लगभग उस समय में 25 करोड़ का बजट था इस सारी कैंपस बनाने के लिए। दादी ने कहा, आपको पता है बैंक में कितना है? सबको तो दादी ने कहा, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? धन जगदीश भाई थे, अन्य लोग भी थे, उन्होंने एक सुझाव दिया। दादी उन दिनों में लगभग 3 लाख भाई बहने ईश्वरी विश्वविद्यालय में संलग्न थे, वह जुड़े हुए थे। हर एक को एक एक रुपया, एक दिन में एक रुपया बाबा की सेवा अर्थ समर्पित करें। देन एक रुपया थे वो तो कितना होगा, एक दिन में 3 लाख रुपया और एक मास में कितना हुआ और एक साल का कितना हुआ, उसी अल्प प्रमाण की सेवा। उसको कहने के लिए एक रुपया है, परंतु एक एक बूंद से तालाब भरता है, एक एक बूंद से घड़ा भरता है और एक एक बूंद से नदी भी भर जाता है। इसके लिए उस समय में लोगों ने बहुत कुछ सेवा किया। आज हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय के एक बहुत बड़े केंद्र को हो, एक विशेष केंद्र स्थान को हो, ज्ञान सरोवर बना। उसके और भी लंबे हिस्ट्री है, मैं बताता हूँ उसके कैसे गवर्नर आए, फाउंडेशन लगाया पहले बहुत। इसके लिए एक रुपये कहने के लिए एक ही रुपया है, परंतु वो एक रुपये से इतने बड़े कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं, यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल सकता है, एक बाबा का ज्ञान विस्तार करने के लिए माध्यम बन सकता है और अनेक लोगों का भाग्य बन सकता है। एक रुपये कहने के लिए, परंतु एक एक रुपये इस यज्ञ में जमा किया, वो लखपति बने, करोड़पति बने और भविष्य में उनको अनगिनत देवताओं के सामने लाख करोड़ के नाम से गिनती नहीं करते। और उसमें इसके लिए ऐसी भाग्य का बनाने के लिए बाबा भाई अंतिम समय है। अभी तो उस समय तो बहुत समय हो गया, अभी उसके बाद में भी उसी सिस्टम से, उसी एक कंसेप्शन से, परसेप्शन से नीचे शांतिवन बनाया। शांतिवन भी पहले छोटा हो गया था और उसमें टेंट में क्लास कराया था। एक बार बाबा का क्लास कराया, बाबा ने कहा अगले साल इधर हॉल बनेंगे तो बाबा भी आएंगे। हम तो केवल हॉल ही बना नहीं सकता है, क्योंकि पहले तो अकोमोडेशन बनाना, किचन बनाना, डाइनिंग हॉल बनाना, रहने की व्यवस्था करना, तब हॉल। तब उसी कंसेप्ट से नीचे भी बना। आज इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राष्ट्रपति से लेकर के प्राइम मिनिस्टर से लेकर के कितने मिनिस्टर्स, गवर्नर, विश्वव्यापी बन माना। एक रुपये कहने के लिए है, भले दूसरे लोग ज्यादा भी दिया, 1 लाख भी दिया, 1 करोड़ भी दिया, अलग बात है, परंतु वो एक एक रुपये में एक इंस्टीट्यूशन का इतना बड़ा एक सेवा का, तपस्या का स्थान बना। बाबा ने बाद में उसका उद्घाटन करने के समय बाबा ने कहा, ये तो स्पिरिचुअल एयरपोर्ट है सर, स्पिरिचुअल एयरपोर्ट। दुनिया भर के बहुत एयरपोर्ट है लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके, परंतु स्पिरिचुअल एयरपोर्ट कोई नहीं बना है। दूसरी है, अभी तो एयरपोर्ट भी आधा तो बंद है, अभी एयरपोर्ट में भी फ्लाइट भी नहीं चल रहा है, कुछ ही चल रहा है, कुछ तो अभी ऐसी परिस्थिति अभी है। मेरे कहने की भाव यह है, आपको एक रुपये नहीं है, आपकी भावना की है, आपकी कंसेंट है, आपके कंकरेंस है और आपका सेवा हाथ बढ़ाने की है, आप सहयोग देने की है, एक हाजी करने की विधि है। हाजी बाबा की सेवा में हम करना है, हमारा भाग्य बनता है, वो भाग्य को बांटने का विधि है। और इसके माध्यम द्वारा बाबा की सेवा, कितनी बड़ी सेवा हुई है और हो रहे हैं आज भी, इसके लिए इतनी महत्वपूर्ण। इसी कंसेप्ट में लेकर के बहुत जगह में बहुत सेंटर खोले, बहुत बड़े बड़े म्यूजियम बने, बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम बने, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हुए। इस कंसेप्ट के आधार से, इस इतनी बड़ी सेवा हुई, इसके लिए आत्मनिर्भर की जो बात है आज की सरकार कहते हैं, परंतु बाबा ने इसको एक एक आत्मा को स्वावलंबी और एक एक आत्मा का भाग्य बनाने का विधि में एक दो को इसमें गरीब और अमीर की बात नहीं है और सेवा की कंसेंट की बात है, कंसर्न की बात है, भावना की बात है। उस भावना से बाबा ने इस ईश्वरी विश्वविद्यालय को, किसी से चैरिटी नहीं मांगा, किसी से पैसा नहीं मांगा। गवर्नमेंट सब आश्चर्य होता था, इतने आज भी आश्चर्य है इनकी पैसा कहाँ से आता है और इतना बड़े प्रमाण में सेवा जो हो रहा है और इसको कैसे आते हैं, इसकी बहुत क्वेश्चन कई जगह में उठा है। इसके लिए बाबा ने एक गुप्त दान भी है और एक तरफ प्रत्यक्षता भी है। अभी बाबा को देखते हैं तो पहले इंस्टीट्यूशन को देखते हैं, संख्या को देखते हैं और सेवा को देखते हैं, पवित्रता को देखते हैं, यज्ञ को देखते हैं। देखने के बाद में उनका एक कंसेप्ट होता है, इतने बड़े आर्गने और इतनी बड़े आत्माओं का जो एक चरित्र निर्माण का काम, देवता बनाने का काम और भारत को स्वर्ग बना, भले भारत को स्वर्ग बनाना और विश्व में मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाना, वो अभी तक लोगों में क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि अभी थोड़े समय के अंदर वो सब प्रत्यक्ष होगा और प्रत्यक्षता का समय भी नजदीक आ गए। अभी 2020 तो पूरा हो रहा है, 2021 आगमन तो हो रहा है मेरा। 20 बाबा ने 1969 तक बाबा ने कोर्स कराया, माना इस सारी ज्ञान का उद्घोषण किया और रिवील किया, रिवील करके सारे सृष्टि में बाबा का ये ज्ञान का अप टू 69 के बाद में अव्यक्त बाबा के माध्यम द्वारा अर्थात गुलजार दादी के माध्यम द्वारा बाप दादा ने ज्ञान को रिवाइज कराया। हर बात की धारणा को बात लेकर के हर बात को रियलाइज कराया और रिवाइज कराया, रिवाइज किया। कुछ समय के अंतराल, कुछ समय से हम सभी रियलाइजेशन कोर्स कर रहे हैं। अभी तो आने वाले दिन में रिटर्न कोर्स है, रिवील रियलाइजेशन, अभी तो रिटर्न। अभी तो 2020 में ऐसा लगता है दुनिया का एक, हम लोग पहले विनाश होता है तो कहते तो कोई विश्वास नहीं करते थे, अभी तो हम लोगों से पूछते कब विनाश होगा, कैसे विनाश होगा, कौन सी ईयर तक रहेगा, कितने समय तक रहेगा। अभी बाबा ने उसका नक्शा तो हमारे सामने, उसका बाबा ने कहा था पहले ऐसे समय आएगा और घर से बाहर जाना मुश्किल होगा। अभी तो लगभग एक साल से सेंटर से भी बाहर नहीं जा सकते, बाहर से सेंटर में नहीं आ सकते, ये सच्चाई ना। बाबा ने ये महावाक्य जो कहा था, दूसरा बाबा ने कहा था शव संस्कार करना भी मुश्किल होगा, अपने मित्र लोग हैं, अपने संबंधी लोग हैं, अपने परिवार के लोग हैं, उसका संस्कार करने का भी, क्योंकि ये बीमारी ऐसा है, ये परिस्थिति आएंगी। तो बाबा ने पहले कितने साल पहले ये साकार बाबा के मुरली में बाबा ने कहा, और एक बाबा ने विविध भाषा में, बाबा ने अभी समय समीप है, समय नजदीक है और विनाश होने वाला है, ये सारी बातें बाबा ने कहा। और उस समय में हमको दूसरी बातों में देह का, देह धर्म की व साधनों को अपने सुख के लिए बहुत विधि साधन बनाने के चक्कर में ही रहेंगे तो बाबा को याद भी नहीं कर सकते, उनका धन भी सफल नहीं हो सकता है। उनका जहां धन सफल होता है उसमें ऑटोमेटिकली मन भी जाता है, जहां धन जाता है वहां मन भी जाता है, उसमें योग भी लगता है और अच्छा प्रेरणा भी मिलता है, सुख भी मिलता है, वरदान भी मिलता है। इसके लिए जो भी सेवा ईश्वरी सेवा समझ करके हम करते हैं उसे सबसे हजार गुना ब्लेसिंग्स मिलता है। एक तरफ बाबा से ब्लेसिंग्स मिलता है, दूसरे ब्राह्मणों से ब्लेसिंग्स मिलता है। कोई मुख से कहे ना कहे और बोले ना बोले, वह महिमा करे ना करे, परंतु उनको बंधाए माने बाबा ने, आपका एक बीज बोते हैं तो हजार बीज, हजार गुना आपको वापस मिलता है। ये भी एक कर्म की फिलॉसफी भी है। दुनिया के हिसाब से देखा जाए, एक गरीब फार्मर, खेती करने वाला, एक गेहूं का एक बीज बोलता है, वह चावल का एक बीज बोता है, वह अन्य कोई भी फसल के लिए बीज बोलता है, उसमें चावल लगाएंगे और गेहूं को लगाएंगे, उसका फसल काटने का समय 4 मास है। 4 मास के अंदर एक बीज से 100 बीज, 80 से 100 बीज तक को रिटर्न करता है, मिलता है नहीं मिलता है। और एक नारियल का बीज वो डाल करके पौधा लगा करके 5 साल आप उसको रक्षा करेंगे, 5 साल के बाद में लगभग 40 से 50 साल तक वो जीवित रहता है और हर दिन में एक नारियल अर्थात 365 नारियल वो देता है। माना उसको कैलकुलेट करो कितनी उसकी वैल्यू हुआ। इसके लिए बाप दादा ने इस संगम में ब्राह्मण बच्चों को, ऐसे तो बहुत बातें हैं इसके लिए, एक आम पौड़ो 5 साल के बाद में 1000 से लेकर 10000 तक आम एक पेड़ दे सकता है। इसके लिए जो प्रकृति भी इतना दे सकता है, हम प्रकृति के पुरुष है, प्रकृति का मालिक है, प्रकृति हम लोगों को आह्वान करता है, प्रकृति को हम पावन बनाने वाले। बाबा ने कहा आप प्रकृति को भी पावन बनाना, प्रकृति को शुद्ध बनाना, प्रकृति को शांत बनाना। अभी रिसेंटली बाबा के मुरली में बाबा ने कहा और प्रकृति भी क्रोधित हो गया, वे क्रोध प्रकृति में भी क्रोध हो गया। क्यों क्रोध हो गया? इंसान के मन में इतनी क्रोध ईर्ष्या द्वेष नफरत से भरा हुआ, इसके लिए ये प्रकृति भी उसके अनुसार बिहेव कर रहा है। इसके लिए आज का एक न्यूज था कि कोरोना वायरस जो है अभी दूसरी रूप धारण करके अभी आ रहे हैं, उससे भी अभी एक साइंटिस्ट ने रिवील किया ये कम से कम अभी 10 साल तक रहेगा। वह 10 साल तक रहेंगे तो क्या करके जाएगा, क्या करके जाएंगे आप सोचने के बाद। इसके लिए 10 साल हमारा तो गारंटी नहीं, हम 10 साल तक जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, और दूसरे शरीर छोड़ के दूसरी पार्ट बजाने के लिए होगा, क्यों भी होगा, परंतु हम 10 साल के बाद में, 20 साल के बाद में, 25 साल के बाद में हम जिंदा रहेंगे तो सेवा करेंगे, ऐसा नहीं सोच सकते। हम तो बाबा को इस समय में ऐसी एक सेवा करके बाबा को प्रत्यक्ष करें, मुझे विश्वास है सब ब्राह्मण लोग तो करते ही है, परंतु बाबा की इतिहास को भी देखते हैं। बाबा ने कहा था आपका अपने हाथ से आप इस स्वर्ग बनाएंगे, सरकार से लोन धनराशि लेकर के व दूसरों से भिक्षा मांग करके व दूसरे तरीके से चंदा वसूल करके जो लोग सत्संग चलाते हैं व ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं व अनेक प्रकार के और विधि डोनेशन कलेक्ट करके दूसरों को देते हैं वो अलग है, परंतु इसके लिए वो फिर भी जिस्मानी है सेवा है, हमारा तो एक रूहानी सेवा है, आत्माभिमानी बन करके आत्माओं को सेवा करके, आत्माओं को आत्मा बना करके, आत्माओं को पवित्र आत्मा बना करके, आत्माओं को देव आत्मा बनाना। अभी कितने साल तक हमारा राज्य चलेगा? 2500 ईयर्स। इतने साल तक आपको पूज्य भी बनेंगे और अनेक प्रकार की सुख सुविधा हमारा साथ बाबा ने देता है। उसके बाद में भी द्वापर युग में भी आपका मंदिर बनता है, आपका यादगार बनता है, आपको एक एक आत्मा का एक एक मंदिर में कितना मूर्तियां रहते हैं आप देखो, इसके लिए वो भी पूजनीय बनता है और कलयुग में भी अंतिम तक भी हमारा यादगार रहता है। इसके लिए संगम युग में सेवा तो सबसे बड़ा माध्यम है, एक तो बाबा को भी खुश कराने के लिए और दूसरा परिवार को भी, अपने परिवार को भी आगे बढ़ाने के लिए और आने वाले भक्तों की सेवा और हमारा राजधानी में आने वालों की सेवा, इन सब के लिए एक फाउंडेशन हो जाता है, एक विधि हो जाता है, एक स्थान हो जाता है और इसी सेवा से हमारा पहचान भी है। अब सेंटर में भी आप देखते हो कोई भी बहुत आकर के सेंटर में हर बात की सेवा मदद करता है, चाहे झाड़ू पोछने का काम है उसको हम जरूर याद करते हैं, धनराशि देता है उनको भी याद करते हैं और उनको भी महावाक्यों से कैसे भी करके उसकी पालना देते हैं। इसके लिए कोई भी सेवा हम करते हैं तो सेवा ही हमारा धर्म है, सेवा हमारे को ऊंच बनाने की विधि है, सेवा हमारे को ब्लेसिंग दिलाने की विधि है, सेवा हम बच्चों को समीप आने के लिए विधि है, सेवा एक दो को सहयोग देने की विधि है। सेवा मनुष्य का पहचान बनाता है, उनका पहचान बनाता है उनका। इसके लिए सेवा जितनी भी कोई भी सेवा जिस समय में, चाहे बाबा ने कहा हुआ, चाहे हमारा बहने कहा, बहनों उन्हें कोई भी सेवा की योजना बना करके सेंटर में भाई बहनों को प्रेरणा देते हैं और उसमें हम सहयोगी बनते हैं और उस सहयोग बनने के कारण से उनको ऑटोमेटिकली योग भी लग जाते हैं। कई बार बाबा ने कहा, एक बाबा ने, पहले सहयोगी है, एक दिन योगी भी बन जाएगा, एक दिन योगी भी बन जाएगा और एक दिन तपस्वी भी बन जाएगा, एक दिन वैरागी भी बन जाएगा, एक दिन अशरीरी भी बन जाएगा, एक दिन निराकारी निरंकारी निर्विकारी स्थिति का भी अनुभव करेगा। इसके लिए सेवा एक तो प्रत्यक्षता का एक विधि है। आज भी दुनिया में कोई भी ब्राह्मण परिवार को देखते हैं, इसका विस्तार को देखते हैं, केंद्रों की संख्या का सुनते हैं, भाई बहनों को संख्या को देखते हैं, देख करके भी आश्चर्यचकित करते, आश्चर्य होते हैं। इसके लिए ऐसी एक केवल अभिव्यक्ति को देख करके हमारा राज्य इस धरती पर आएगा, हमारा हम ऐसी एक दुनिया स्थापन करेंगे जिस दुनिया में क्या नहीं रहेगा आपको पता ही है, फिर भी इस दुनिया में एक दिन भी पुलिस फोर्स, मिलिट्री फोर्स, सीआरपीएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इनके बिना एक दिन भी ये सोसाइटी आगे नहीं बढ़ सकता है, न रह सकता, क्योंकि हमारा दुनिया में इन सब को आवश्यकता ही नहीं। क्यों? सब संतुष्ट बनेगा, संपन्न बनेगा, एक दो को रेस्पेक्ट रहेगा, एक दो को चत भावना से देखेगा, आत्माभिमान से देखेगा, महात्माभिमान से देखेगा। उसी कारण से हमारा ऐसी दुनिया में कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं हो सकती। जो अहिंसा परमो धर्म की जो बात है, वास्तव में हम उसका साकार रूप, एक प्रैक्टिकल रूप, एक केवल एक व्यक्ति नहीं है, एक समूह नहीं है, एक विश्व को ऐसी बनाने का जो कार्य है, इसके लिए बाबा ने उन नेगेटिविटी को निकालने का, नेगेटिविटी को त्याग करने का, नेगेटिविटी को फुल स्टॉप लगाने का जो विधि है, इस ज्ञान के माध्यम द्वारा, योग के माध्यम द्वारा हम करते हैं। उसी कारण से हम पूज्य बन जाते हैं। वो भी एक सेवा है, वो भी एक बड़े महत्वपूर्ण सेवा। अभी तो बाबा ने तन से मन से धन से तो करते आए, अभी तो मन की सेवा करो, ऐसी मन की एक विशेष सेवा करो, वाइब्रेशन फैलाओ, वायुमंडल बनाओ और शक्तिशाली वायुमंडल बनाओ, और इसी वायुमंडल में लोग आए तो ऑटोमेटिकली अनुभव करें। आप लोगों ने इस विशेष समय लेकर के अपने अपने स्थान से इधर ज्ञान सरोवर में आया तपस्या करने के लिए, और इस समय में कोविड का प्रहर चल रहा है, ऐसी समय में आप तपस्या करेंगे, कितनी आपको भाग्य बनेगा और साथ साथ में वायुमंडल को शुद्ध होगा, क्योंकि सारी दुनिया का मौन की भाषा से, संकल्प की भाषा से, ईश्वरीय शब्द भाषा से हम सेवा करने के लिए एक मौका है। इसके लिए बाबा ने कहा, आपकी मनसा की शक्ति बहुत बॉर्डर को क्रैश करता है, कोई भी देश के बॉर्डर, धर्म के बॉर्डर, जाति के बॉर्डर, अभिमान का बॉर्डर और अनेक बॉर्डर को सब तोड़ करके बाबा ने ऐसी एक कीर्तिशाली सेवा कराएंगे, और इसके लिए वायुमंडल बनेगा। ऐसे वायुमंडल बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय में सारी दुनिया में गरीब और अमीर, करोड़पति भी क्रोधपति है, इसके लिए सब मन में विकृति तो भरा हुआ है, विकार भरा हुआ और ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ, नफरत भरा हुआ, और इन सब का संकल्प एक वायुमंडल को अपवित्र बनाया, अशुद्ध बनाया, दुखी बनाया, रोगी बनाया, और इसके कारण से और भी अधिक प्रमाण से अभी डॉक्टर भी जल्दी बीमार हो रहा है। पहले तो डॉक्टर को तो हालांकि था, अभी तो डॉक्टर भी बीमार हो रहा है, और बहुत इसके लिए हॉस्पिटल में भी अभी जगह नहीं मिल रहा है, बहुत जगह में हॉस्पिटल में भी जगह नहीं मिल रहा है, क्योंकि कोविड के कारण बहुत हॉस्पिटल, हम लोग हॉस्पिटल नहीं बनाए तो बाबा का रहने का स्थान बना, गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करके नदी किनारे के पास जो हमारा एक भव्य भवन बनाया, और सरकार को हम एक साल से उसको दिया हुआ, इसके लिए COVID-19 का पेशेंट्स को रखते थे लगभग 200-250, अभी तो थोड़ा सब कम हो गया, एक दो होगा, अभी जल्दी से जल्दी वापस लेंगे। परंतु कहने की भाव ये है, इस दुनिया अभी हॉस्पिटल भी भर गया, घर में भी भर गया, रास्ते में भी लोग मर रहे हैं, कहा भी इसको जगह ऐसा जगह नहीं है जिसमें अच्छा जगह है। इसके लिए ऐसी दुनिया को आखिर हमको पवित्र बनाना, शुद्धिकरण करना और उनको भी मुक्ति धाम में ले जाना, और कोई विधि नहीं है। हम बहुत मिसाइल बना दिया, हमारा देश में अभी हर प्रकार का मिसाइल है और 50 किलोमीटर से लेकर के 5000 किलोमीटर तक मारक शक्ति हमारे पास है, और भी ज्यादा मारक शक्ति है। क्या इससे दुनिया का दुख दूर होगा, इससे दुनिया का पाप कम होगा? परंतु होलसेल पाप करने का विधि है, होलसेल मुक्ति धाम बनाने का विधि है, होलसेल विनाश की विधि है। इसके लिए सरकार व अपनी प्रजा जो भी उनकी जो टैक्स देते हैं और GST और माना गवर्नमेंट सर्विस टैक्स कहो उसको, दूसरे शब्दों में इसको दे करके भारत को कहो, विश्व को कहो, सारे विश्व में एक दो को कॉपी करते हैं। इस कॉपी करने से विश्व में स्वर्ग नहीं होगा। ब्रह्म कुमार कुमारियों का जीवन को कॉपी करो, उसको फॉलो फादर का फॉलो शिक्षा को कहो, तब तो भारत और विश्व में एक शांति आ सकते है। इसके लिए बाबा ने जो कहा हुआ, और भी बहुत विधि सरकार ने अभी रचाए रचते रहते हैं, परंतु उससे विधि से टेम्पररी सोल्यूशन हो सकता है, कुछ दिन के लिए सोल्यूशन हो सकता है, कुछ क्षण के लिए सर्विस हो सकता है, परंतु इस विधि से देश में खुशी नहीं आ सकता है, और भी बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसी समय पर बाबा के बच्चे कोई भी ईश्वरीय सेवा की साधन बनाते हैं और इसके विहंगम रूप में सेवा करो। विहंगम रूप में एक तो टेक्नोलॉजी के सपोर्ट से विहंगम रूप का सेवा कर सकते हैं, एक तो सबसे बड़े बाबा का जो वरदान दिया हुआ, शक्ति दिया हुआ, गुण दिया हुआ व ज्ञान दिया हुआ, इनको कैसे हम यूज करें मनसा की सेवा करने के माध्यम द्वारा, वायुमंडल बनाने के माध्यम द्वारा। जितनी हम अधिक सेवा करने की शक्तिशाली होगा, तब तो सारी धरती और आसमान दोनों शुद्ध होगा, प्रकृति भी अच्छी रीति से परिवर्तन होगा। बाबा ने कुछ दिन पहले कहा था, प्रकृति भी क्रोधित हो गया। वे क्यों क्रोधित हो गया? हम धरती को इतना साल से कहते धरती माँ, और सस्य को भी व वन संपत को भी, उनको भी एक तरफ वन संपत कहते थे, प्रॉपर्टी को, उसको एक प्रॉपर्टी के रूप में, वेल्थ के रूप में हम सभी सदियों से रामायण से लेकर के उससे आदिकाल से लेकर के उसको वो विधि था, वो स्थान था, अभी तो वो भी सभी तमो प्रधान हो गए। इसके लिए जैविक केसी की तरह हम जा रहे हैं, परंतु जैविक केसी इतनी करोड़ों लोगों को, इतनी प्रमाण का संख्या को फॉलो करना मुश्किल है। भले इसके लिए इन्होंने औषधियों के माध्यम द्वारा, केमिकल्स के माध्यम द्वारा, फर्टिलाइजर्स के माध्यम द्वारा उसको कुछ बढ़ाने के लिए कोशिश करता है, परंतु उसका दुष्परिणाम सारी धरती और आसमान सब खराब होते जाए। पानी में 1000 फीट नीचे खोदो व बोरवेल लगाओ, उधर भी पानी खराब ही मिल जाए। 1000 फीट, 10, 20, 50, 100 की फीट की बात नहीं कर रहा हूं, 1000 फीट से नीचे भी जाओ तो उधर भी खराब पानी मिलता है और पॉइजन पानी मिलता है। अभी तक हमने कभी नहीं देखा, इन 50 साल के अंदर पहले कोई भी बॉटल पानी भी सेल करना होता है, अभी तो पानी का स्थिति, आगे चल करके पानी भी दुखदायी हो सकता है और वायु भी दुखदायी अभी तो हो चुके हैं, और इसके साथ हर प्रकृति की पंच तत्व भी दुखदायी। ऐसे पंच तत्व को पावन करने की हम लोगों को कुछ समय निकाल करके योग करना होगा, तपस्या करना होगा, शुभ भावना रखना होगा, शांति की वायुमंडल को देना, साथ साथ में तन को भी हम जैसे बाबा ने दधीच रुचि की जैसा सेवा किया, ऐसे हर ब्राह्मणों का तन सफल होना चाहिए। तन के माध्यम द्वारा जितने भी हम विकारों को वश होकर के विकर्म किया है उसको भी शुद्धि करना है और दूसरों को भी संबंध संपर्क में आने वाला उनको भी पवित्र बनाना है। इसके लिए हमारा तन का भी यूज होना चाहिए, ऐसा नहीं हमारा तन यूज ना हो। इसके साथ साथ हमारा धन एक एक पाई और इस ईश्वरीय साधना में वह कोई न कोई विधि बना करके और सेंटरों को अच्छी से बनाओ, सेंटरों को प्रबंध कराओ, प्रिंटरों की सेवा का आगे बढ़ाओ। यज्ञ मधुबन आपका है, मधुबन का हिस्सा बनो, मधुबन की सेवा करो। और देखो मधुबन सारे विश्व की एक नक्शा है, एक आईना है, एक दर्पण है। ऐसी मधुबन का और भी विशेष सेवा करने की विधि भी आप सब सोच सकते हैं। इसके लिए मेरे कहने की भाव है सेवा में भी आपका इस बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सेवा ब्राह्मण के जीवन में बहुत लोगों का पहचान उससे आधार से है। इसके लिए उसका वेस्ट नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा हुआ कुछ समय के अंतराल में आप देख सकते हैं, अभी भी देख रहे हैं, ये सब धन भी मट्टी में मिलेगा, मट्टी भी मट्टी में मिल जाएगा, है ना। मट्टी भी क्या है, हमारे पास इतनी जमीन है, जायदाद है और इतने मकान है, ये सभी मकान क्या होगा उसका हालत, मट्टी भी क्या होगा आप सभी जानते हैं। इसके लिए धन भी क्या होगा उसकी हालत हम सभी जानते हैं। अभी कुछ भी एक घंटे के लिए, एक सेकंड के लिए आप लोग सोचिए, अभी सारी दुनिया के जो कम्युनिकेशन है सैटेलाइट के आधार से निर्भर है। हर देश का कम्युनिकेशन सिस्टम जो है सैटेलाइट के आधार से है। और सैटेलाइट किसी भी कारण से अर्थक्वेक हो जाता है, भूकंप आ जाता है, बड़ी प्रमाण में भूकंप होता है, उस समय में क्या होगा, जिस एंगल में, जिस एक्सिस में, जिस डिग्री में सैटेलाइट को फिक्स किया वो तो चेंज हो गया, तो अर्थ पोजीशन चेंज हो गया तो वो सैटेलाइट फेल्यूर हो गए। और सैटेलाइट फेल्यूर हो गया तो आजकल हर प्रकार के बैंकिंग सिस्टम है, टिकटिंग सिस्टम है और भी हर प्रकार का साधन जो भी बना हुआ डिजिटलाइजेशन कर दिया है। और ये डिजिटलाइजेशन क्या होगा, डिस्ट्रक्शन का हो जाएगा। और बैंक में पैसे भी रखा होगा, बैंक में कितना पैसा है आपको भी मालूम नहीं पड़ेगा, मालूम होते तो पूछे तो दिखा नहीं सकते और दे भी नहीं सकते। और इसके लिए जो इसके कागज की वैल्यू हो जाएगा, अभी तो नोट की वैल्यू है, पैसे की वैल्यू है, और वो वैल्यू भी जीरो हो जाएगा, कागज की वैल्यू हो जाएगा। इसके लिए ऐसा दिन भी समीप आ रहा है, क्योंकि सत्ययुग में ये कागज नहीं चलेगा, सत्ययुग रुपए नहीं चलेगा, डॉलर नहीं चलेगा, हेन नहीं चलेगा, पाउंड नहीं चलेगा, वो चलेगा ही नहीं, उसको ऑटोमेटिकली उसका विनाश भी होगा। नहीं तो भरा हुआ तो भी ये कागज की वैल्यू, कुछ दिन पहले जो नोट क्या बोला उसको है? डीमोनेटाइजेशन हुआ, उस समय बहुत लोगों ने इसको लास्ट कुछ लोगों ने इसको जला दिया, क्योंकि गवर्नमेंट पकड़े तो इसको पैसा कहां से आए, इसके अकाउंट देने में मुश्किल हो गया बहुत लोगों ने। और कुछ लोगों ने इसका चोरी चोरी करके अच्छे अच्छे कुछ बैंक मैनेजर से अन्य लोग उसको कन्वर्ट भी करके अपना संपत्ति बना दिया। इसके लिए जिनका था उनका वास्तव में थोड़ा बहुत उनको मिला हुआ, इसके लिए ये वैल्यू भी खत्म हो जाएगा। ऐसी कागज ही है ना, एक सरकारी स्टैंप लगा हुआ इसका प्रॉमिसरी नोट ऐसा है ना, इसके लिए वो भी इसका वैल्यू नहीं रहेगा, केवल आपके मन की शक्ति की वैल्यू रहेगा, आपकी पवित्रता की शक्ति की वैल्यू रहेगा, आपके संकल्प की शक्ति का वैल्यू रहेगा, आपकी सेवा का भाग्य की वैल्यू रहेगा, आपने क्या दिया उसकी वैल्यू रहेगा, क्या रखा है उसका वैल्यू नहीं रहेगा, क्या रखा है उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, क्या वैल्यू नहीं रहेगा। इसके लिए बाबा ने कहा हम एक एक गरीब निवास बच्चों से भारत को स्वर्ग बनाएंगे। बोला अभी तो लोग तो कहते हैं ना, अभी फार्मर सब स्ट्राइक में है, क्यों स्ट्राइक में, ये सारी जो बड़े बड़े बिल्डर्स है, सारे बड़े बड़े जमींदार भी नहीं है, कैपिटलिस्ट है, ये सभी जमीन भी हड़प लेगा, हमारा उपज भी हड़प लेगा, उसी कारण से ये भ्रांति फैल करके अभी सारी देश में अशांति, 30 दिन हो गए बेचारा घर छोड़ करके बीदी में बैठे हुए, रास्ते में बैठे हुए, और उनकी कुछ बातें सच है, उनकी कुछ बात मिथ्या भी है और मिस प्रोपेगेंडा भी है, परंतु वो जो भी होगा होगा, परंतु ये कहने की छोटी सी संशयात्मक बुद्धि भी विनाश तक ले जा सकते। उनके एक संशय आया, सरकार के प्रति संशय आया और उस संशय को एक आंदोलन के रूप में रूपांतरित हो गया। उसका मिसगाइड करने वाला भी अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए, अपनी लालच कारण से, उसी कारण से भी अशांति फैलते जा रहा है। इसके लिए इस दुनिया में ऐसी स्थिति बनेगा, इसका विनाश काले विपरीत बुद्धि बाबा ने जो कहा था ना, उसका पूरा नक्शा दिखाई दे रहा है। उसका स्क्रिप्ट पहले ही बाबा ने बोला था, अभी फिल्म चलते हैं, फिल्म चल रहा है, भरी विश्व में फिल्म चल रहा है। ऐसी फिल्म में हम लोग साक्षी होकर के भी देखो और बाबा का साथी बनकर के भी चलो, और कुछ विशेष सेवा करके अपना सफलता का अनुभव करो। ऐसे नहीं तो बाद में देखेंगे, कोरोना जाने के बाद में, कोरोना जाने वाला नहीं ले जाने वाला है, ले जाने के लिए वो आया हुआ। अभी ऐसी कोरोना के टाइम में भी हम विशेष सेवा कर सकते हैं, अपने वो विशेष भाग्य बना सकता है और भविष्य बना सकता है, और यज्ञ रक्षक बन सकता है, कुल रक्षक बन सकता है, और विश्व रक्षक, विश्व परिवर्तक बन सकते हैं। विश्व परिवर्तन के कार्य को हम लगाएंगे, उसका भाग्य हम सबको ऑटोमेटिकली मिलेगा। और ऐसी भाग्य विधाता हमारा साथ है, भाग्य हमारा किसके लिए आया बाबा, वो तो खुद तो राज्य करने के लिए नहीं आएगा, हम सबको देवता बना करके, राज्य आपको देख करके, ऐसी राजधानी का मालिक बना करके, ऐसी विश्व में पंच तत्व सहित सब आपका शरण होगा, आपके गुलाम होगा, आपका सेवादारी होगा, आप पंच तत्व का भी मालिक बनेगा, सिर्फ एक घर की मालिक ने, मोहल्ले का मालिक ने, एक पड़ोसी का व एक एरिया का मालिक नहीं है, सारे विश्व का मालिक कहते हैं। अभी हम सभी कहते हैं तो मेरा बाबा कहते हैं, ऐसा है ना, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, परिश्ता बाबा, चाहे लास्ट मोमेंट में आने वालों के मुख से भी मेरा बाबा निकलता है तो उनका भी विश्व, उनका भी अधिकारी है, और जो भी 80 साल से जो सेवा कर रहे उनका भी मेरा बाबा, वो भी विश्व का मालिक। इसके लिए जिनके मुख से वो बात निकलता है, उनका रियलाइजेशन के माध्यम से निकलता है, और साथ साथ में उनको बाबा को रियलाइज करके सेवा में संलग्न होता है, उनका भी बहुत बड़े भाग्यवंत। परंतु उसके लिए प्रेरणा स्रोत कौन है? प्रेरणा स्रोत तो हम लोगों के लिए बाबा ने प्रेरणा दिया, शिक्षा दिया, तीसरा आंके खोल दिया और हर प्रकार की विधि भी बता दिया। अभी उनको भी हम प्रेरणा देने के लिए हमारा अंदर पर्याप्त शक्ति होना चाहिए, जो शक्ति होगा और विश्व को एक बनाने का कार्य जो है, अभी तो एक एक दुनिया में बिगड़ते जा रहे हैं। मुझे कल की एक न्यूज में तो देखा, यूपी में हर गाड़ियों के पीछे कुछ जाति का नाम, हम ठाकुर है, हम फलाना है, तो गाड़ी में भी ये लिखा हुआ था। इसके लिए सरकार एक कानून बना करके उसको फाइन डाल करके उसका विधि, माना मनुष्य को आत्मा बनाने के कार्य के बजाय देहाभिमान तो बना पहले ही बन गया, और देहाभिमान का आइडेंटिफिकेशन भी दे रहा है। आत्मा भी बना करके हम स्वधर्म में स्थित होने के बजाय, शांति में स्थित होने के बजाय, पवित्र जीवन जीने के बजाय और आनंदमय जीवन जीने के बजाय, विश्व को एक बनाने के बजाय डिवीजन, जो भी कर्म कर रहा है, जो भी योजना बना रहा है, जो भी धन दौलत आदि इसमें लगा रहे, सब मनुष्य को दुख देने की विधि बन रहा है। ईर्ष्या और देश और नफरत का आग में बांटने के लिए, जलाने के लिए विधि बन रहा है। इसके लिए ऐसी विधि के समय में प्रत्यक्ष होने का 2021 अपने हिसाब से मैं सोचता हूँ, इस कल्प वृक्ष विज्ञान के हिसाब से आने वाले दिन ब्राह्मणों के लिए एक चैलेंज भी है, एक अपॉर्चुनिटी भी है, एक भाग्य बनाने का भी है। ये तीनों इकट्ठे हो रहा है। ऐसे अभी तक तो हम स्टूडेंट रूप में पढ़ाई पढ़ते थे और ज्ञान का विस्तार करने का काम किया, और उसका परीक्षा के समय भी आ गया, उस समय में एक तरफ चैलेंजेस है, एक तरफ उसको अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं हम लोग, उस अपॉर्चुनिटी को एक्सीलेंसी में परिवर्तन कर सकते हैं। और ऐसी समय पर निर्भय स्थिति के होना चाहिए और निर्विघ्न, अपने मन में निर्विघ्न होना चाहिए, अपने संस्कारों में कंप्लीट सफाई होना चाहिए, शुद्धता होना चाहिए। और इसके लिए आपकी कोई भी प्रकार की सेवा आप लेते तो उसका पहले मन की सेवा, देन धन की सेवा, देन संकल्पों की सेवा, धन की सेवा और समय की सेवा। ये समय हम सबको डिमांड कर रहा है, बाबा प्रेरित कर रहा है। ऐसी सेवा करेंगे तो मैं समझता हूँ इन 10 साल के अंदर वो वायरस क्या वायरस का बाप भी नहीं रह सकता, हमारा दुनिया आ सकता है, हमारा दुनिया आएगा, हमारा राज्य आएगा, हमारा विश्व आएगा। उस समय में आपको इसके लिए अब न्यूक्लियर बम की जरूरत नहीं है, क्लीन एंड क्लियर बम की जरूरत है, एक डिवाइन शक्ति की जरूरत है। अभी राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता, ये सारी सत्ता जो है विफल हो चुकी है और विनाश की तरफ ले जा रहा है। एक ही सत्ता है, और कौन सी सत्ता? ईश्वरीय सत्ता। ईश्वरीय सत्ता जो है, इस सत्ता एकत्रित होकर के एक संकल्प हम करने का विधि बने, हम सबका एक ही लक्ष्य है। ये लक्ष्य की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, हम समझता हूँ इन 10 साल के अंतराल में इस शुद्धिकरण का काम चलेगा और पवित्रीकरण का काम चलेगा, दिव्यीकरण का काम चलेगा। ये सारी आसुरी गुण अपने आप में, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार करके अपने आप में भस्मासुर जैसा मर गए ना, अपने सिर पर हाथ रख करके मारा। अभी तो हर कलियुग के, हर देश, हर संप्रदाय, हर सत्ता वाले, हर पार्टी वाले अपने सिर पर हाथ रख करके वह दूसरों को जलाने के लिए सोचते हैं, परंतु उसका सिर अपने आप को जल रहा है। ऐसे सारे देश को, विश्व को, धरती को विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। हम एक ही बाबा के बच्चे हैं, विश्व को एक बना रहे, ऐसे पवित्र दुनिया बना रहे। इसके लिए आप सबकी अंगुली की जरूरत है, आप सबकी दृढ़ संकल्प की जरूरत है, आप सबकी प्रतिज्ञा की जरूरत है। अभी नया साल आ रहा है, नया साल में ऐसे कुद्ब के प्रतिज्ञा करके और जल्दी जो भी बाबा का काम बचा हुआ है उसको संपन्न करेंगे। मुझे विश्वास है, मुझे होप है। इसके लिए आप सब बाबा भी में विश्वास रखा है। ऐसे करने वाले हरेक आत्मा को बाबा की तरफ से, अपनी तरफ से, दादियों की तरफ से, पूर्वज दादियां एडवांस पार्टी में वेट कर रहे हैं, उनकी तरफ से नया साल का मुबारक। और इस जीवन, ऐसी जीवन बनाए, एक एक दे करके कॉपी कर सकते। ओम शांति, नमस्ते, गुड मॉर्निंग।